आत्मभावना लेक्चर नंबर 17। ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ नमः सिद्धेभ्य, ओ शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयय्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्।
येनात्मा बुध्यता एव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः।
संकलन है और ये प्रवचन है समाधि शतक ऊपर। समाधि शतक के रचयिता है पूज्यपाद आचार्य। 8 और 9 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था। फिर से गया आवाज। 8 और 9 नंबर का श्लोक पढ़ा था अभी हमने, और उसी संबंधी प्रवचन चल रहा है। 40 नंबर के पृष्ठ पर है हम, और दूसरा पैराग्राफ है। अरे भाई, तारा आत्मानु वास्तविक स्वरूप शू छे तेने एक बार जान तो खरो, क्योंकि अनादि से क्या भूल हुई है, इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों को ही जानने में रुक गया है और अपने को भी शरीर रूप ही मान रहा है। शरीर ही मैं हूँ ऐसी उसकी मान्यता बनी है। अपने असली स्वरूप को उसने कभी पहचाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए कहते कि एक बार जान तो खरो, आ मनुष्य देह तो स्मशान मां बड़ी ने भस्म थशे। शरीर तो जड़ परमाणु भेगा थईने बन्यो छे, ते आत्मा नथी। यानी वो एक भव पूर्ते उसका जो ग्रहण हुआ है, शरीर रूप उसकी रचना हुई है, संयोग हुआ है, फिर उसका वियोग होकर जीव अन्यत्र चला जाएगा और शरीर की उन परमाणुओं की जो यथायोग्य अवस्था बननी है वो बनेगी। प्रश्न संख्या 40 आत्मभावना पुस्तक की 40 दूसरा पैराग्राफ हम दूसरी लाइन पढ़ रहे थे। शरीर तो जड़ परमाणु भेगा थईने बन्यो छे, ते आत्मा नथी। नवीनी जिनका संयोग हुआ है ऐसे पुद्गल परमाणु का पिंड जो जड़ है, अचेतन है। कहते आत्मा नहीं, आत्मा तो अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वरूपे अचल रहनार छे। यानी कितने शरीर अलग अलग धारण करके छोड़े हैं, परंतु उसका एक भी गुण कम नहीं हुआ है, ना शरीर का कोई गुण उसमें आया है। वो शरीर रूप कभी हुआ ही नहीं है, ना ही कभी भी उसने शरीर का कार्य भी किया है। कहते वो तो अपने ही स्वरूप से अचल है। पुण्य पापनी क्षणिक वृत्तियों आवे ने जाए, ये वृत्ति ने वो चारित्र गुण की जो विभाव पर्याय है उसको यहाँ वृत्ति उठना कहा, पुण्य की और पाप की, शुभ और अशुभ की। यानी इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं, ये यही वृत्ति उठती रही उसकी, कभी पुण्य की कभी पाप की। क्योंकि पुण्य पापनी क्षणिक वृत्तियों, क्योंकि वो तो पर्याय है ना, तो क्षणिक वृत्तियों, और वो भी कैसे आवे ने जाए, क्योंकि तो सादी शांत भाव है उसके, पर्याय का क्षणिक भाव है, इसलिए आवे ने जाए, तेटलो आत्मा नथी। फिर भी इस भूल, जीव की भूल क्या हुई, उस रूप मैं हूं ये मान लिया। क्षणिक जो विभाव भाव है उस रूप मैं हूं मान लिया। देह थी पार, राग थी पार, पार यानी उससे भिन्न, देह से भी भिन्न और राग से भी भिन्न, अंतर्मा ज्ञानादि अनंत गुण स्वरूप पोतानो आत्मा छे, तेनी साथे एकता करीने तेना आनंदनु जा स्वसंवेदन करियूं, देखो ये तो कभी दूसरे रूप हुआ ही नहीं है, तो उसके साथ एकता करना ही नहीं, क्या वो है ही उस स्वयं उस रूप, परंतु मान्यता मानना है उस पर के साथ एकत्व की। स्वयं अपना अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जो अनंत गुण स्वरूप मैं स्वयं हूँ, तो ऐसा उसने माना नहीं, तो क्या कल्पना की पर के साथ एकत्व बुद्धि। तो जैसा स्वयं है वैसा अगर मानेगा तो उसी समय आनंद का स्व संवेदन होगा, त्यां बाह्य पदार्थों अंश मात्र पोताना भासता नहीं। पहले आत्मा ही नहीं भासित होता था, अब तो अपने को पहचान लिया तो कोई रंच मात्र भी कहो या परमाणु मात्र भी अपना नहीं भासित हो रहा, बाह्य पदार्थों अंश मात्र पोताना भासता नहीं, ने तेमा क्या सुख बुद्धि रहती नहीं। पहले जो है ना वो तो उल्टी पोजिशन थी, विपरीत मान्यता थी, अभी सही हो गया, अभी कोई बाह्य पदार्थ अपने रूप नहीं भासित हो रहा है और ना ही उनसे मुझे सुख मिलता है, ऐसी कल्पना है। चैतन्य नु सुख चैतन्य माज छे एनो स्वाद जान्यो त्या संयोगनी भावना रहती नहीं। अभी संयोग है उस संबंधी वो विकल्प भी चलेंगे, परंतु अभी वो मुझे ये संयोग नहीं चाहिए वो चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि संयोग से तो मैं भिन्न हूँ ये उसने अनुभव पूर्वक जान लिया। अज्ञानी ने अंतरना चैतन्य ना आनंद ना स्वाद नी खबर नहीं, सच्चा सुख उसने चखा ही नहीं कहेंगे हम, उसको पता ही नहीं है। ते थी बाह्य संयोग मा सुख मानी ने ते संयोग नीज भावना भावे छे, ने संयोगो मेळवी ने तेना भोगवटा वड़े सुख लेवा मांगे छे। चाहता है पर उससे सुख है ही नहीं तो कैसे मिलेगा उसे। पण जड़ संयोग माथी अनंत काले सुख मळे तेम नथी, इसको लगता है पैसों में सुख मिलता है, तो पहले कुछ नहीं था तो अभी कमाया धन तो सुखी हुआ ना, तो कि नहीं और ज्यादा चाहिए वाली तृष्णा वहां पड़ी गई तो दुखी दुखी रहा। कितना भी पैसा क्यों, क्योंकि उसे पैसे से क्या चाहते है, सुख कैसे मिल रहा, नहीं नहीं उसे पांचों इंद्रियों के भोग मिलेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं पैसे के कारण, पैसा होगा तो जी कुछ भी खरीद सकता है, ये उसकी मान्यता है। मंत कहते कि उससे सुख कभी मिलेगा ही नहीं। पर जड़ संयोग मा थी अनंत काले सुख मै तेम नहीं, केम के चैतन्य ने सुख बाहर मा नहीं। अज्ञानी जीव बाह्य संयोग तरफ ना राग द्वेष हर्ष शोक नूज वेदन करे छे। हर्ष भी होता है ना, उसने कुछ सोचा और वैसा उसका इच्छा के अनुसार हुआ तो उसकी में हर्ष मानता है, यह हर्ष भी हुए दुख रूप परिणति है उसकी, क्योंकि उसने सच्चा सुख माने क्या है उसने जाना ही नहीं अभी तक। तो हर्ष शोक नूज वेदन करे छे, वेदन इसलिए कहा क्योंकि उसके पर्याय में है ये, इसलिए उसका वेदन कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी हो रहा है। अगर इसका वेदन नहीं होता तो दुख भी नहीं लगता उसको। दुख का वेदन क्यों है, क्योंकि वो राग का वेदन कर रहा है जो दुख रूप है। स्वामी ने कितनी बार का वो झेर है, वो भी कलशामृत में कितनी बार आ रहा है, झेर का स्वाद ले रहा है। पन संयोग थी ने राग थी पार असंयोगी चैतन्य स्वभावना अति इंद्रिय आनंद नो वेदन तेने नथी। स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी उसका वेदन नहीं है। वेदन किसका होता है, जो पर्याय में प्रकट होता है उसका वेदन होता है। स्वयं तो सामर्थ्यशाली है, अनंत धी ऐसा आया है ना, अनंतानंत धी शक्ति वाला है ये, ऐसा होते हुए भी यानी ज्ञान और आनंद का पिंड होते हुए भी उसका अनुभव क्यों नहीं आनंद का। तो कहते जब पर्याय में प्रकट होता है उसी का अनुभव होता है। स्वयं तो उस रूप है, उस रूप होने पर भी उसका लक्ष्य करके पहले तो उसका विश्वास किया, फिर उसका लक्ष्य किया, उसी में एकाग्र हुआ तो जो है वो पर्याय में प्रकट हुआ। उसके लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करनी है, वो सहज स्वरूप है उसका, स्व संवेद्य यानी अपने ही संवेदन में आवे अनुभव में आवे, ऐसा आत्मा का ही स्वभाव है, वैसा ही उसका स्वरूप है। परंतु अनादि से इस जीव ने इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों को ही जानने की कोशिश की, उसमें से सुख मिलता है ऐसी मान्यता की, इसलिए उसका अपना ज्ञान और आनंद स्वरूप लबालब भरे हुआ होता भी ऐसे होते हुए भी उसको अनुभव में नहीं आया। उसका लक्ष्य करने पर वो वेदन में आ जाता है।
यहाँ पर एक बात हम नक्की करते हैं,
हाँ,
कि जो पंचेंद्रिय है,
आवाज नहीं आ रही,
जो पंचेंद्रिय है वो पंचेंद्रिय की विषय यानी बहिर्मुख है, यानी इंद्रियों के जो कि जानना होता है वो बाह्य बातें वो जानेगा, और ये इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मुझे आत्मा का अनुभव मेरे ज्ञान के द्वारा ही होगा, मेरे स्वभाव को स्वभाव से ही पहचाना जाएगा, इसलिए वो बाह्य पदार्थों को यानी इंद्रियों से जो जाना जाता है उससे मैं प्राप्त करूं तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसे उल्टियां और खोटी मान्यता की दृढ़ता हो जाती है, और वो कोशिश करता है इंद्रियों से जानने की। वो तो इंद्रियातीत है, विकल्पातीत है, सब बातें वो तो कुछ जानते ही नहीं ना, अभ्यास नहीं है उसको, इसलिए कह रहे हैं कि भाई चैतन्य ने सुख बाहर मां नथी, ये कहने का कारण क्या है कि वो बाहर से सुख लेना चाहते, पांचों इंद्रियों के विषयों के द्वारा सुख की प्राप्ति होगी ऐसा उसका भ्रम है, वही बता रहे।
अहीं पूज्यपाद स्वामी आत्मा नु स्वरूप बतावे छे के हे जीव, मिला ना 40 पृष्ठ पर आपका पेज नंबर अलग है, तारो आत्मा मनुष्यादि शरीर रूप नथी, जीवों को समझा रहे हैं। अभी यहाँ सामने मनुष्य है तो उन्हीं को बता रहे हैं कि मनुष्यादि में सब कुछ समझ लेना, अभी तो तुम सामने मनुष्य है तो ये मनुष्य देह रूप तू नहीं हो, अनंत ज्ञान आनंद शक्ति स्वरूप तारो आत्मा छे, तेने अंतर मां स्व संवेदन थी तू जान। यानी एक बार अंतर में देख तो सही, तुझे अनुभव में आएगा तब वो सच्चा विश्वास हो जाएगा, तब तक तो खाली कोरी बातें है जो सुनी है पढ़ी है बस इतनी ही है, क्योंकि आचार्य स्वयं अनुभव करके सामने वाले जीवों को समझा रहे, तो अंदर देख तो सही तेरा आत्मा कैसा है, उन्होंने भी पहले तो अनुभव किया है ना, और तब वो बिल्कुल ठोक बता रहे हैं कि अंतर्मा स्व संवेदन थी तू जान, ऐसा कह रहे, आ आत्मा देहती भिन्न, आत्मा कहने से प्रत्यक्ष है ये कहने, देहती भिन्न ज्ञान आनंद स्वरूप छे, कर्म शरीर अने विकार ए त्रणेनी उपाधि थी रहित, क्या कहते हैं, कर्म भी जड़ है शरीर भी जड़ है, विकार जीव के अपराध है, उसके अपनी पर्याय में हो रहा है परंतु वो क्षणिक है, उपाधिक भाव है, कर्म के उदय में होने वाला भाव है, कर्ता तो जीव स्वयं है परंतु वो उसका कायमी स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है। तो कहते हैं कि कर्म शरीर अने विकार ए त्रणेनी उपाधि थी रहित, पोतानो सहज ज्ञानानंद स्वभाव छे, तेने ज्ञानी स्व संवेदन थी जाने छे। कर्म भी है शरीर भी है रागादि भी है, जो है उससे भेद करना है, उसको होते हुए उससे रहित हमको देखना है, पहचानना है अपने को, हाँ तभी तो उसके असली स्वरूप कैसा है वो पहले ख्याल में लेना है, प्रतीति में लेना है, ऐसा अलग से दिखेगा नहीं, अंदर कुछ दिखने वाला नहीं है। देखो स्फटिक मणि है, उसके संयोग में कोई लाल फूल है तो पूरा स्फटिक में वो तो लाल झाई दिखती है, वो लाल दिखते हुए भी हमको उसके जो निर्मलता का उसका विश्वास करना है, और ये जो लाल अभी दिख रहा है वो उसके संयोग में जो चीज पड़ी है उसके कारण ये स्वयं परिणमित हुआ है, परिणमित वो स्वयं स्फटिक स्वयं परिणमित हुआ है परंतु उसका कायम ही नहीं, ये कहना चाहते। ऐसे ही यहाँ जीव का स्वरूप कैसा है तो ज्ञान आनंद शक्ति स्वरूप आत्मा है, और ये कर्म से रहित है शरीर से रहित है और रागादि विकारों से भी रहित है, और उसको स्व
हाँ अवस्थाएं बताई, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। अब यहाँ ये समझा रहे कि ये तीन
आवाज
ये जो तीन है ना वो तीन की बातें, यानी कर्म यानी द्रव्य कर्म, शरीर यानी नौकर्म और विकार यानी भाव कर्म, अब देखो बात ऐसी है, ये तीनों होते हुए प्रत्येक जीव बहिरात्मा है, जिसने अभी अनुभव नहीं किया है। अब कहते हैं शरीर भी है, कर्म भी है, विकार भी है, फिर भी वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, फिर भी वह मुनि हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं, ये तीनों उसको कुछ बाधित नहीं करते। अब कहते कि आगे जाकर भाव कर्म खत्म हुए, यानी राग द्वेष मोह के परिणाम खत्म हुए, और वह जीव अभी मुनि अवस्था है लेकिन पूर्ण वितरागता होता है, यानी उसको शरीर भी अटकाते नहीं है और कर्म भी अटकाते। उसके आगे कहते शरीर है लेकिन आधे कर्म निकल गए, चार घाती निकल गए, चार अघाती है, फिर भी वह परमात्मा हो गए। और जो सिद्ध है उसके तो ना शरीर है, भाव कर्म तो पहले निकल गया, नौ कर्म भी नहीं है और आठ कर्म यानी द्रव्य कर्म भी नहीं है। यानी हम तो ऐसा ही मानते कि ये मेरी सारी बातें इन फेवर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ तो कहते कि ये तीनों जो दोष है उस दोष के होते हुए भी तू मुनि बन सकता है। बोल, अब सम्यक दृष्टि तो बहुत छोटी बात है, यहाँ यही कह रहे हैं कि तूने ये सबसे भिन्न त्रणेनी उपाधि छे, वो कोई अच्छी बात नहीं है। गोरा शरीर मिला तो अच्छा, काला शरीर मिला तो उपाधि, ऐसा नहीं। कोई भी शरीर है ये तो उपाधि है। यहाँ तो राग द्वेष कहाँ, तो वो तो पुण्य के पाप के परिणाम जो भी है दोनों ही उपाधि है, और आठ कर्म तो है ही है, लेकिन ये तो कहने पुरते हैं। वास्तव में इन सबसे जीव स्वतंत्र है, लेकिन वो माने तब ना। गुरुदेव श्री कई बार बोलते थे जरा कर्म मोड़ा थी जाए तो कहीं मार्ग मिले, अरे ये वो नहीं भाई। यानी उनके एक एक जो वाक्य है वो ऐसे मतलब याद रह गए हैं कि पूछो मत। ये जो आत्मानी मुक्ति करवी हो, आत्मानी नहीं तने पोतानी मुक्ति करवी हो, आत्मानी यानी किस सबके लिए कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं स्व संवेदन थी आओ आत्मा जानवा योग्य छे। यानी तू एक ही रास्ता है कि अपने स्व के ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान सके, और वो उसको अभी तक कभी क्या कहते माफक आयु नहीं। चलो ज्ञानी निरंतर,
वो तो स्व संवेदन है अति इंद्रिय आनंद का अनुभव, यानी उसको तो ये सुख का मार्ग है, और सुख ही अभी वो तो एक बार अनुभव कर दिया तो निरंतर उसको वो सुख स्वरूप का तो वेदन होगा ही होगा। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना सुख का वेदन भी और अति इंद्रिय आनंद और बढ़ते चले, प्रचुर जिसको कहेंगे मुनियों को तो प्रचुर होता है। और ये तो मोक्ष सुखमय है तो उसका मार्ग भी सुखमय है, यानी ये तो जीव के फेवर ही फेवर है, पूरा फेवरेबल मार्ग है, परंतु वो उसका सीरियसली नहीं लेते। हाँ चलो ऐसा होगा होगा, वैसे स्वाध्याय करने की चीज एक बार एक घंटा सुना भी छोड़ दिया, फिर दिन भर हमारे काम में लग जाएंगे। तो कहते कर्म शरीर ने विकार ए त्रणेनी उपाधि रहित पोतानो सहज ज्ञानानंद स्वभाव छे। सहज है वो, किसी ने निर्माण नहीं किया, वो तो है ही ऐसा। और तेने ज्ञानी स्व संवेदन थी जाने छे, उसको जाना कब कहेंगे, उसका स्व संवेदन हुआ और वो कहाँ से आया आनंद, बाहर से तो नहीं आया, सबका लक्ष्य छोड़ दिया था, इंद्रियों के द्वारा बाहर का जानना छोड़ दिया था, और अभी अपने आत्मा को लक्ष्य में लिया है और उसको अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हुआ, तो ये अब स्वयं यानी उसको गारंटी हुई ना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और उसका लक्ष्य किया, तब ये पर्याय में आनंद की अनुभूति हुई उसको।
मैं तो क्या कहूँ आपको, लोगों को ऐसा लगता है संयोग छोड़ दूंगा तो मेरा अलाव, तो अभी कोई हमने ऐसा देखे हैं कि बस मरणासन्न हुए हैं लोग, हमने ऐसे लोग देखे हैं कि मरणासन्न हुए तो उसको नाक में क्या बोलते गले में नली, नाक में नली, इधर वो उधर क्या क्या लगाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? कि अभी तो मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहता, मैं तो घर जाके मरूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा वपड़ा उतारने को चालू किया। यानी ऐसा मानते हैं कि मुनि अवस्था लूंगा मैं, तो क्या नग्नता से मुनि अवस्था आती है? लेकिन लोगों की यही मान्यता है कि संयोग को दूर करो। पहले किसी को कहा जाए कि तू संयोग को ना हटा सकता है ना जुटा सकता है, तो तुम्हारे पागल हो गए, चल चल चल। यानी जो मूल बात है, उस मूल बात को कितनी बार भी गुरुदेव हमको समझाते हैं, हम तो क्रिया में ही सारा भरोसा रखते हैं। बहुत लोग देखे हमने, अब वो कोमा में गया है, कुछ नहीं कर सकता है, तो बाकी का हमारा घर का पब्लिक उसको उठा के नीचे रखता है, गद्दी पर से उठा के चटाई पर, इसका चटाई पे मरण आएगा तो मोक्ष जल्दी मिलेगा। क्या अब वो बेचारे के कौन से परिणाम चल रहे हैं, उसको कोमा में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन ये क्या बताता है कि शुभ भावन से धर्म होता है, ये जो मान्यता चल रही है, और सब संयोग छोड़ देंगे, और वो नहीं छोड़ता फिर भी जबरदस्ती उठा के, 4 घंटे तक तेरे लिए सब अभी यहाँ त्याग है, तो कौन बताने वाला, उसके सगे वाले कोई होंगे? और वो तो पानी अंदर में होता होगा उसको। जो भी, मैं तो ऐसे ही देखावा क्रिएट कर रहा हूं। बोलू क्या?
बोलो
नहीं, जाने दो, चलो।
हाँ देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी ये तीनों से रहित है जीव, तो आत्मा ने मुक्ति करवी हो, हम मुक्ति चाहते तो तेने स्वसंवेदन थी आवो आत्मा जानवा योग्य छे। ज्ञानी निरंतर शब्द है, अकेले शुद्ध उपयोग की बात नहीं, पोताना आत्मा ने आवो ज अनुभवे छे। ज्ञान चेतना का है ना, अपने को किस रूप अनुभव चल रहा है उसका, तो ज्ञान रूपी अनुभव चल रहा है। अज्ञानी देह वालो ने राग वालो ज आत्मा माने छे, ते संसार नु कारण छे। वो अपने को उस रूप अनुभव कर रहा है, मैं देह रूप हूँ ऐसा उसका अनुभव चल रहा है, मैं राग रूप हो गया ऐसा उसका अनुभव चल रहा है। धर्मी ने ज्ञानी जाने छे के देव मनुष्य वगैरह हूँ नथी, तेमा रहेलू चैतन्यपणु छे तेज हूँ छू। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो हूँ छू, ने शरीर कर्म वगैरह तो जड़ स्वरूप छे ते हूँ नथी। लक्षण के द्वारा उसने अपने को भिन्न पहचान लिया, भिन्न वस्तु है, और वो शरीर कर्म तो जड़ है, पुद्गल के है। राग पण उपाधि रूप भाव छे, ते मारा ज्ञान दर्शन स्वरूप थी भिन्न छे। देखो, पहले तो कर्म और शरीर तो बिल्कुल पुद्गल ही है, पौद्गलिक ही है रचना, क्योंकि उसके कारमाण वर्गणा, उदारिक शरीर संबंधी आहार वर्गणा आदि से बनी है, वो तो पुद्गल द्रव्य है ही है। क्योंकि राग तो अपने में उत्पन्न हो रहा है, जीव की पर्याय है, उसका विभाव भाव है, तो कहते कि वो अपने स्वभाव से भिन्न स्वरूप है, उल्टा स्वभाव है उसका, स्वरूप भिन्न है, विपरीत है। मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान दर्शन आनंदमय है, और ये मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है, क्योंकि ये दुखरूप भाव है, आकुलता वाला भाव है, और मैं स्वयं ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, तो ये मेरा नहीं हो सकता, ये विपरीत है। तो ज्ञान दर्शन स्वरूप थी भिन्न छे, आवा भेद ज्ञान वगर धर्म थतो नथी। यानी आवा भेद ज्ञान वगर आत्मा का अनुभव थतो नथी, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन स्वानुभव नहीं होगा। स्वसंवेद्य तो है, परंतु अभी मान्यता में वो भ्रमणा चालू रखकर हम उसका वेदन करना चाहते हैं, वो तो नहीं हो सकता। प्रश्न, आ शरीर वगैरह बधुं देखाय छे ने? शरीर देखाय छे पण ते जड़ छे एम देखाय छे। देखो, जो दिखाई देता है वो क्या है? आंखों से जो वो पुद्गल है ना, किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो सारा पुद्गल द्रव्य है। आत्मा कहीं जड़ नथी, शरीर ने जाननारो शरीर थी जुदो छे, यानी ते जाननार पोते ज्ञान स्वरूप आत्मा छे। देखो, शरीर जड़ है ना, वो स्वयं को जानता है ना अन्य किसी को जानता है, तो शरीर को जानने वाला तो आत्मा स्वयं है। और वो शरीर से भिन्न है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, तो उसको जानने वाला तो जानन स्वरूप कोई चैतन्य होना चाहिए। हाँ, ते जाननार पोते ज्ञान स्वरूप आत्मा छे, आवा ज्ञान स्वरूप आत्मा ने जे जाने छे तेने बाह्य इंद्रिय विषयों में गृद्धता होती नहीं, यानी उसकी लालसा नहीं रहती। पुण्यना ठाठ होय तेमा सुख बुद्धि थती नहीं, ने प्रतिकूलता होय तेने दुखनु कारण मानता नहीं।
देखो यहाँ पर दो हम सम्यक दृष्टि ले सकते हैं। दो सम्यक दृष्टि में ये पुण्यना ठाठ होय, ये तो हम देवों को लेके, उनका तो पुण्य ये चक्रवर्ती से भी कई गुना अधिक है संयोगों की अपेक्षा। तो कह रहे पुण्यना ठाठ हो, एमा सुख बुद्धि होती नहीं, किसको? सम्यक दृष्टि को। और क्या कहते हैं? प्रतिकूलता नो गंज हो, यहाँ गंज नहीं लिखा,
प्रतिकूलता,
यानी प्रतिकूलता बहुत प्रमाण में हो तब भी उसको दुख का कारण नहीं मानते। ये सातवें नरक का नारकीले हो सम्यक दृष्टि, उससे तो अधिक प्रतिकूलता किसी को नहीं होगी। वो सम्यक दृष्टि है तो कहते संयोगों से मुझे दुख नहीं है, ये संयोगी भाव जो है, यानी संयोग के कारण से उत्पन्न हुआ मेरे जो राग द्वेष के परिणाम, वो दुख रूप है। ये ज्ञानी की कोई बात ही कोई जुदी है भाई। दुख ना कारण मानता नहीं। फोर्थ लाइन गो अहेड।
संयोग थी जुदो हूँ तो ज्ञानानंद स्वरूप छू, एम धर्मी जाने छे। देखो अज्ञानी क्या करता है, कोई प्रतिकूलता आती है, कोई शरीर में रोग हो जाए, कोई विपरीत होता हो जाए, जैसे आर्थिक नुकसान हो जाए तो क्या रोता रहता है, क्या करे, अभी हमारे ऐसा है, ऐसे दुख के दिन है, ये तो इधर इतना, मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, ऐसा दुख दुखी दुखी होते रोते रहता है ना, कि हमारी साढ़े साथी आई, हमारे ऐसा ही है, हमारे ग्रह की दशा ऐसी है। अभी उसको जो कुछ बताने वाले भी मिलते हैं और वो स्वयं भी रोना रहता है, रोता रहता है। और क्या है, कोई अनुकूलता हो तो वो अनुकूलता के कारण उसमें से मुझे कुछ सुख मिलता है, ऐसा भी वो नहीं जानता। तो संयोग थी जुदो हूं तो ज्ञानानंद स्वरूप छू। संयोग शब्द ये बताता है कि दो चीजें भिन्न है, अभी वो इन कॉन्टेक्ट, अभी हाँ टेम्पररी टूगेदर आ गए, संयोग हुआ है तो मैं तो उससे भिन्न ही हूं। संयोग क्या बता रहा है, वो पदार्थ मेरे से भिन्न है, जो भिन्न ही है वो अच्छे है बुरे, ये बात कहां से आई। तो संयोग थी जुदो हूं तो ज्ञानानंद स्वरूप छू, एम धर्मी जाने छे। अल्प हर्ष शोक थाय पण ते कोई संयोग ने पोताना माने ने हर्ष शोक थता नथी। क्या अभी जो ज्ञानी हुआ है चौथे पांचों गुणस्थान वर्ती भी है, अभी गृहस्थ है, तो उसके हर्ष शोक के परिणाम भी हो गए, परंतु वो संयोग से मुझे ये हो गया ऐसे मान्यता में नहीं, विपरीत मान्यता नहीं, अभी चारित्र की कमजोरी है उसके कारण उस गुणस्थान के योग्य वहां जितने कषाय चोकरी है वैसे उसके परिणाम हो गए, भी उन परिणामों को भी अपने से भिन्न जान रहा है। जो कोई वृत्ति उठ रही है वहां पर हर्ष शोक के परिणाम हो रहे हैं उनको भी वो जिसको त्रयस्थ होकर साक्षी रूप से उसको जानता रहता है। अज्ञानी चैतन्य स्वरूप ने चूकी ने, ज्ञानी अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए संयोगों को भी देखता जानता है, उसमें उठने वाले हर्ष शोक को भी देखता जानता है। जैसे संयोग भिन्न भाषित होते हैं वैसे रागादि भाव भी भिन्न भाषित होते हैं। और अज्ञानी चैतन्य स्वरूप ने चूकी ने, उसको चैतन्य स्वरूप का तो पता ही नहीं है, आ जड़ शरीर ने ज पोतानु माने छे, यानी मैं तो शरीर रूप हो गया, मैं तो शरीर रूप हूं ऐसा ही मानता है। आ शरीर तो जड़ कलेवर मर्दू छे, कलेवर एंड डेड बॉडी है ना, तो जो जीव चला जाएगा तभी डेड होगा, तो क्या अभी भी डेड है, डेड ही वो लिविंग कब था तो डेड होने को ख्याल में आई बात। उसको लिविंग इसलिए कह रहे हैं कि जीव यहाँ रह रहा है, इसलिए इसको सजीव कह रहे हैं। और जीव चला जाता है कहते निर्जीव, जीव से रहित हो गया, जीव निकल गया वहां से, तो कहते उसको ये अभी भी मर्दा ही है। तो यहाँ कभी एक बात की, कौन से शिविर में मैंने की थी, अनिता के पिताजी ना हीरा भाई, अरे शुभ बोलो शुभ बोलो ऐसा अशुभ मत बोलो, अरे अशुभ क्या सच बोल रहे हैं
सत्य को झेलने की
हाँ
कैपेसिटी नहीं।
उनको ऐसा लगता है कि मर्दों कह रहे, यानी उनको तो अभी मर जाए तो क्या है, अभी थोड़े ही मरे हो, ऐसा मत बोलो। इससे हम भिन्न है और इसमें तो अचेतन है, इसमें जान ही नहीं है, इसका स्वीकार करने के लिए भी ढाढ़स नहीं है। यानी वो बातें कोई कहता है तो सुनने के लिए उनको ऐसा लगता है क्या है, यानी कितनी उसमें आत्मबुद्धि देह बुद्धि जैसे कहीं ना, देह में आत्मबुद्धि है। तो कहते हैं शरीर तो जड़ कलेवर मर्दू छे।
यहाँ श्रीमद जी कहते हैं ना, आ तो धीरा नु काम छे, कायर नु काम नहीं। ऐसा है, ये एक्सेप्ट करना, इसमें धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। यहाँ तो तू अभी ये शरीर मुर्दा ही है बोले तो एकदम उधर ही कचक में जाएगा।
अज्ञानी क्या करते, अज्ञानी ते मर्दाने ज પોતાનું સ્વરૂપ માનીને અનાદિકાળથી મર્દાને સાથે લઈને ફરે છે, નયા નયા મર્દા લઈ કરે, પણ આ શરીર તો જડ મળદું છે ને હું ચદાનંદ સ્વરૂપ જીવતો જીવ છું એમ ભાન કરીને, અરે વો કભી નહીં મરે એસી સંજીવની ઉસકો પિલા રહે કે તો મેં તો ચિદાનંદ સ્વરૂપ જીવતો જીવ છું, જીવતો જીવ છું એને અમને કિતની વાર દેખાય, જિસકા નામ હી જીવ ઇસલિયે હૈ કે અનાદિ અનંત વો જીવ હી હૈ, વો કભી વો તો મરને કા સવાલ હી નહીં ઉસકો,
જાગતો જીવ ક્યાં જાય,
જાગતો જીવ ક્યાં જાય ઉભો, એમ ભાન કરીને જડ મર્દાની મૂર્છા છોડતો નથી, એને મેં એ ઇસ રૂપ હૈ વો તો બોડી એને ડેડ બોડી જો કહેંગે મર્દા જો હૈ यही मैं हूँ यही मैं हूँ यही मैं हूँ रटता रहता है, पूरी जिंदगी उसी में चली जाती है। और फिर जब संयोग का वियोग हुआ तो पहले से वो देख देख कर उसकी कल्पना से पहले ही मरा जा रहा था, फिर इसको छोड़कर और अन्य शरीर में वहाँ आत्मबुद्धि चालू हो जाती है। इसके पहले हम दूसरे देह में थे कि नहीं थे, मनुष्य पर्याय में आए उसके पहले थे, तब उस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि होगी कि नहीं होगी, हाँ तभी तो आए ना ये पंचम काल में, यहाँ वहाँ एकत्व बुद्धि नहीं होती तो सम्यक तो लेके और कहीं गए होते, यहाँ जन्म लिया तो मिथ्या तो में लिया है, तो उस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि थी, वहाँ मरण हुआ संयोग का वियोग हुआ, यहाँ दूसरा देह धारण के इसके साथ चलिए, ये ऐसी आगे गाड़ी चलनी है क्या, चलना है। तो कहते जड़ मर्दानी मूर्छा छोड़तो नहीं तेने शरीर वहालू लागे छे, પણ ચૈતન્ય ભગવાન વહાલો લાગતો નથી। જ્ઞાનીને તો એક પોતાનો ચૈતન્ય ભગવાન જ વહાલો લાગે છે, એ સિવાય સમસ્ત બાહ્ય પદાર્થોને પોતાથી ભિન્ન જાણે છે, તેમાં ક્યાંય મૂર્છાતા નથી। જીવ કો ક્યાં લગતા હૈ, અરે મેં એ સચ માનુંગા, એ આપ કહેતે વૈસા મેં ભિન્ન હું, એ ભિન્ન હૈ, એ વૈભવ મેરા ભિન્ન હૈ, और ये सारा इतना मैंने इतने सालों से कमाया, इतनी पढ़ाई की, अभी इतना कमाया, इतना सब जमा किया है, और आपके पीछे लग जाए तो ये भी चला जाएगा, वो भी नहीं हाथ में आएगा इसे। यानी उसको अंदर से भरोसा नहीं है, भय है। उसको ये तो मालूम है कि वो सामने देखता है आजू बाजू में कि अभी अभी तो चलते बोलते कोई थे और वो तो देह रह गया और वो जीव चला गया, कहता भी है यहाँ कोई कायम रहने वाला तो है नहीं। जिन संयोगों को वो स्वयं के ये अपने मान रहा है उन सबको छोड़ के जाने वाला ये तो नक्की है, फिर भी उनसे अभी नाता तोड़ने के लिए तैयार नहीं। मरण के दम तक उनके प्रति जो मूर्छा है उल्टी तो बढ़ती जाती है, जितना वो तो बुढ़ापा आता है कहो या कुछ हो, तो पहले तो बच्चा था तो कुछ ऐसा नहीं था उसको इतना, मगर जितना बड़ा होता है जितना बूढ़ा होता है तो और उनके प्रति लगाव बढ़ता चला जाता है। तो ज्ञानी तो एक पोतानो चैतन्य भगवान ज वहालो लागे छे, ए सिवाय समस्त बाह्य पदार्थों ने पोताती भिन्न जाने छे, तेमा क्यांय मूर्छाता नथी। जो श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा छे, चरम शरीरी, एक चरम शरीरी किसको कहते हैं आशा बेन, लास्ट लास्ट चरम यानी अंतिम, ये अंतिम शरीर है, क्यों अभी देह धारण नहीं करेंगे, अभी मुक्त होने वाले। चरम शरीरी एज भवे मोक्ष जनारा छे, तेमने अंतर मा भान छे या लक्ष्मण वगैरह थी मारो आत्मा भिन्न छे, पण हजी राग छे एटले लक्ष्मण ना मर्दा ने 6 महीना सुधी साथे लईने फरे छे। तेमना बे पुत्रो लव अने अंकुश आवीने पिताजी ने पगे लागीने दीक्षा लेवा चाल्या जाय छे, पण राम तो लक्ष्मणनी प्रीति आड़े काई बोलता नथी। लक्ष्मणना मर्दाने खवरावा पीवरावा नवरावानी चेष्टा करे छे। त्यां बाह्य दृष्टि वाला ने तो एम ज शंका थाय के शू आ ज्ञानी, के ज्ञानी ऐसे होते हैं क्या कहते हैं, जो हम आप जानते हो इनको नहीं समझ में आती, ये बात कह रहे
हैं।
पण तेने ज्ञानी नी दृष्टि नी खबर नथी। ये दृष्टि में ये उनकी मान्यता का और ये जो राग का जो दोष है, अस्थिरता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं, बाहर देखने वाले को नहीं पता चलता, क्योंकि उसके अंतरंग प्रतीति तो पता नहीं उनको। खभे लक्ष्मण नु मर्दू पड़ू छे त्यारे पण दृष्टि चिदानंद स्वरूप ऊपर ज पड़ी छे। एक बात आई थी ना, ज्ञानी निरंतर पोताना आत्मा ने आवो ज अनुभवे छे। अमे तो चिदानंद स्वरूप आत्मा छे, आ शरीर पण अमे नथी, तो पछी बीजाने शी वात, अने आ राग पण अमारू वास्तविक स्वरूप नथी। लक्ष्मण के प्रति जो तीव्र राग है, उसका भी उनको एहसास है कि अपने में ये दोष है, अपराध है, उसको भी अपने से भिन्न जान रहे। अमे तो अनंत ज्ञान आनंदनी शक्ति स्वरूप छे, आ अंतर्भान ज्ञानी ने निरंतर, निरंतर शब्द है ना, जो
एक मिनट,
हाँ
मुझे जरा कंफर्म करना है आपसे, श्री रामचंद्र जी तो चरम शरीरी कहा और वो सम्यक दृष्टि कहा, और सम्यक दृष्टि होंगे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि होने चाहिए।
हाँ।
तो उनको जब ऐसा लक्ष्मण के प्रति इतना
तीव्र राग
रहा, उस समय वो क्षायिक सम्यक भी थे क्या बाद में हुए, ये मुझे मालूम नहीं है। यानी
क्षायिक सम्य दृष्टि,
क्योंकि उसी भाव में मोक्ष जाने वाले तो पक्का है,
क्षायिक सम्य दृष्टि मानने में भी
तो कोई नहीं जावे।
ये पूछ रहे कि उस समय वे क्षायिक सम्य दृष्टि थे कि नहीं थे, क्योंकि देखिए तो कौन से केवली के समोचरण में गए थे, अनंत वीर या ऐसा कुछ आता है ना, रामचंद्र जी उनके समोचरण में गए थे, उनको उनके समय में हुए, पर दूसरे किसी केवली के समोचरण में गए थे, मैं आपको बताऊंगी रेफरेंस बाद में।
24 तीर्थंकर के पुस्तक में शायद मिले,
पद्म पुराण में भी है ना, रामायण है ना, जैन रामायण उसमें आते तो उन्होंने वहां पूछा था केवली से, उनको ये पता है कि अपने भाई के प्रति इतना तीव्र मोह सम्य दृष्टि है, और ये तीव्र मोह जो करने जैसा है फिर भी अपने को हो रहा है, उसका वो स्वयं पूछते हैं उसका कारण, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है। ऊपर
यानी उन्होंने वो केवली से पूछा।
हाँ
मुझे वो तो बराबर है।
हाँ तो ये मैंने केवली के समीप में उनको वो क्षायिक सम्य दृष्टि भी वहाँ हो सकते है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं थे,
हम कंफर्मेशन चाहते हैं कि वो समय शायक थे कि नहीं,
वो उसके लिए अभी आगम देखना पड़ेगा कहीं।
हाँ
अब ये तो नारायण वगैरह हो गए ना, उसके खास विशेषताएं होगी। हाँ नहीं ऐसे भी जो मेडिकल में भी कुछ ऐसे बॉडीज रखते हैं ना, स्केलेटन जिसको कहेंगे, वो ऐसे वो तो सूख जाते हैं डेड बॉडीज, यानी वो तो उसके बाहर से पूरे ऐसे हड्डी का सापला जैसा दिखता है, यानी वो स्किन वगैरह के साथ होते हैं, ऐसे वो सूख गए हुए होते हैं इसे ऊपर में रखे। पर ये तो अब ये जो शलाका पुरुषों की कुछ विशेषताएं होती है ना, जो रावण जारे सीता ने उपाड़ी गयो त्यारे सीताजी ना विरह में रामचंद्र जी झाड़ ने पर्वत ने पूछे छे અરે ઝાડ, તે ક્યાંય મારી સીતાને દેખી? અરે સીતા ધર્માત્મા પતિવ્રતા, એનું શું થયું હશે? અરે પર્વત, તે ક્યાંય મારી જાનકીને જોઈ? એમ પહાડને પૂછે છે, પણ પર્વત કાંઈ બોલે? છતાં આ પ્રસંગે અંતરમાં દેહથી પાર ને શોકથી પાર ચિદાનંદ સ્વરૂપનું ભાન તેમને વર્તે છે. અજ્ઞાની તો પોતાના શરીરને આત્મા માને છે ને બીજામાં પણ શરીરને જ આત્મા તરીકે દેખે છે, પણ શરીરથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ છે એમ પોતાના અંતરવેદનથી જણાય છે. એક હી રસ્તા હૈ, અપને અંતરવેદન સે હી વો દેહ સે ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વરૂપ કો જાના જા સકતા હૈ. આત્મા પોતે અનંત જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ પરિણમ્યો છે, તે પછી અચલપણે સ્થિર રહે છે, તેમાંથી કદી ચ્યુત થતો નથી. માટે આવા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ આત્માને જાણવો ને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છોડવી. અને કરને જૈસા યહી હૈ કે અપને જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ આત્મા કો જાનના હૈ. ये राम और लक्ष्मण की यहाँ बातें बताई हैं. ये दो जो दिखाए हैं वो कुलभूषण देशभूषण है क्या? नहीं नहीं, वो तो लव और कुछ. अच्छा, लव और कुछ दीक्षा लेने की वो पूछने आए कि बाद में जाके ऊपर मुनि हो गए. हाँ, उन्हीं के समय से, क्योंकि वो मुनि अवस्था थे और उन पर उपसर्ग होता था, इन्होंने दूर किया था, बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ था, उनके समझ जाके इन्होंने दीक्षा ली होगी शायद, पता नहीं. अभी हम 43 नंबर पेज पर आए हैं. नेक्स्ट जो है 10 नंबर का, पहले हम वहां से देखेंगे, समाधि तंत्र में से देखेंगे 10 नंबर का श्लोक. समाधि तंत्र पुस्तक निकालना, 10 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 23. हाँ, अब ऊपर 10 नंबर के श्लोक है, उसके ऊपर एक लाइन है, देखो. स्वदेह एवं अध्यवसायम कुर्वाणो बहिरात्मा परदेहे कथम भूतम करोति इति आह. उसका अर्थ नीचे दिखा है एक लाइन में. स्वदेहमा आवो अध्यवसाय करनार, स्वदेहमा अध्यवसाय ने स्वदेह में यही मैं हूं ऐसे मिथ्या मान्यता, एकत्व बुद्धि करनार. श्लोक 10 मिला, 23 नंबर का पृष्ठ है हमारे में. अभी जो ऊपर लाल अक्षर में श्लोक है उसके ऊपर की अभी मैंने संस्कृत लाइन पढ़ी, उस संस्कृत का गुजराती एक ही लाइन में जहाँ श्लोक 10 लिखा है ना नीचे, उसके ऊपर उसका गुजराती में लिखा है अनुवाद, कि स्वदेहमा आवो अध्यवसाय करनार बहिरात्मा परदेहमा केवो अध्यवसाय करे छे ते कहे छे. परद जीव को भी परदेह रूप मानता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे. स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढ परत्वेनाध्यवस्यति. अभी इसके लिए जो स्टार लिखा है ना वहां नीचे, उन्होंने मोक्ष प्रावृत का एक उद्धरण दिया है. यहां लिखते हैं, नियदेह सरित्थं पिच्छिऊण परविग्रहं पयत्तेन अच्छेयणं पिगहियं साहिज्य परम भायेन. और ज्ञानार्णव का भी यहाँ लिखा है, इसीलिए लिखा है कि दूसरे किसी के लिए. स्वशरीरं इव अन्विध्य परां चित्तचेतनं परमात्मानम अज्ञानी परबुद्धया अध्यवस्यति. वही बात है, परांगत चित चेतनम। हाँ, ऊपर मोक्ष प्रावृत है, नीचे ज्ञानार्णव है, दो उन्होंने उद्धरण दिए। हाँ, अष्टपाहुड़ में से मोक्ष प्रावृत। अभी हम गाथा तो हमने ऊपर देखी थी श्लोक, है ना, श्लोक का अन्वयार देखते हैं। मूढ़ यानी अज्ञानी बहिरात्मा, परमात्मा धिष्ठितम। परमात्मा अधिष्ठित है, परात्मा अधिष्ठितम है ना। आपने अन्वयार्थ में परमात्मा लिखा कि परात्मा लिखा है? परात्मा है ना, परात्मा चाहिए, यहाँ परमात्मा हुआ है। नहीं, परमात्मा अधिष्ठितम नहीं, ऊपर श्लोक में देखो ना, परात्मा अधिष्ठितम। परात्मा देखो, आप टीका संस्कृत की टीका देखो, दूसरी लाइन क्या है, परात्मनाधिष्ठितम। वहां तो उसका परात्मना अधिष्ठितम ऐसा है, अब यहाँ परात्मा करो, परमात्मा का परात्माधिष्ठितम करो। र मा है ना, उसका रा करो, परात्मा मा निकालो और रा करो। परात्माधिष्ठितम बीजाना आत्मा साथे रहेला, अचेतनम, अचेतन एटले चेतना रहित, परदेहम बीजाना शरीर ने, स्वदेह सदृशम पोताना शरीर समान, दृष्टवा एटले जोईने, परत्वेना बीजाना आत्मा रूपे अध्यवस्यति माने छे। अध्यवस्यति ने विपरीत मान्यता है ना उसकी, यानी जैसे अपने शरीर को, निज देह को, स्वदेह को आत्मा माना, पर देह को वो पर आत्मा मान लिया। टीका, व्यापार व्याहार, व्याहार यानी वाणी वचन, आकार आदि वड़े परदेह ने पोताना देह समान जोई ने, केवो जोई ने, कर्मवशात बीजाना आत्मा थी अधिष्ठित। अधिष्ठित यानी वो दूसरा आत्मा उसमें रह रहा है ना, अभी आत्मा के द्वारा परदेह अभी अधिष्ठित है, यानी स्वीकृत। अचेतन परना देह ने चेतना युक्त जोई ने, यानी वो क्या कर रहा है, दूसरे का देह भी अचेतन है, उसमें भी वो देह से भिन्न अन्य आत्मा है। अब इसको, उस देह को देखकर उसको कैसा देख रहा है, चेतना युक्त जोई ने बहिरात्मा तेने, तेने इतले देह ने परपणा रूप अर्थात परना आत्मा रूप माने छे। अपने देह को अपना मैं स्वयं हूँ मानता है, और अन्य देह को देखकर वो दूसरा जीव है ऐसा मान लेता है। भावार्थ, अज्ञानी बहिरात्मा जेवी रीते पोताना शरीर ने पोतानो आत्मा माने छे, तेवी रीते बीजाना एटले स्त्री पुत्र मित्रादिकना अचेतन शरीर ने तेमनो एटले स्त्री पुत्र मित्रादिकनो आत्मा माने छे। यानी वो देहरूपी सर्वथा उनको देखता है। विशेष, जेम पोताना शरीरनो नाश थता बहिरात्मा पोतानो नाश समझे छे, तेम स्त्री पुत्र मित्रादिना शरीरनो नाश थता ते तेमना आत्मानो नाश समझे छे। शरीर का नाश का उसका वियोग हुआ ना, जीव ही वहां से चला गया है, वो जीव उस देह को छोड़कर चला गया। कहते वो तो देह अभी तो वो जीव है, वो अभी जिंदा था, वो अभी मर गया, वो उसका नाश हो गया, क्योंकि देह को उसने परजीव मान लिया। ये मेरी स्त्री अभी अभी तो जिंदा थी, अभी मर गई, क्योंकि वो देह चेतन यानी वो जो देह है ना, अभी उसकी चेतना थी, अभी उसकी चेतना खलास हुई, वो नष्ट हो गया, ऐसा मानता है। तो कहते उसको आत्मा का नाश समझता है। एम ते पोताना शरीर मा आत्मबुद्धि એટલે આત્મ કલ્પના કરી દુઃખી થાય છે, એ ઉસકી કલ્પના હૈ. અને બીજાઓ પણ શરીરની પ્રતિકૂળતાના કારણે દુઃખી થાય છે એમ માને છે.
સ્વયં દેહરૂપ અપને કો માનતા હૈ તો દૂસરે કે શરીર કોઈ રોગ હૈ કહો યા અન્ય કોઈ અવસ્થા હોતી હૈ તો વો ભી ઉતના હી દુઃખી એસે યે માન લેતા હૈ.
એવા પ્રકારના અધ્યવસાયથી શું થાય છે વો તો બાદ મેં દેખેંગે હમ શ્લોક 11 મેં. અભી તો હમકો 10વા શ્લોક આત્મભાવના મેં સે દેખના હૈ.
વૈસે તો યે બાત ઉન્હોને પહેલે હી શ્લોકો મેં બતા ચુકે થે વો, क्योंकि वो विषय से लगती हुई बात है. देखो इसका हेडिंग ही दिया उन्होंने, आत्मभावना पृष्ठ है 43 जहां 10 नंबर का श्लोक लिखा है उसी पृष्ठ पर देखना आपको. अज्ञानी बीजा ने पण देह बुद्धि थी ज देखे छे, यानी दूसरे आत्मा को भी वो देह देह है ऐसा ही वो जानते. मूड बहिरात्मा અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી આત્માને જાણતો નથી, તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી માત્ર શરીરને જ જાણે છે ને તેને જ આત્મા માને છે. અનાદિસે યહી ભૂલ ઉસકી હો ગઈ. આ શરીર તે જ હું છું, શરીરને બોલવાની ચાલવાની ચેષ્ટાઓ તે બધી મારા આત્માની ચેષ્ટા છે એમ અજ્ઞાની માને છે. એને યહી મેરી યે મેરા હી કાર્ય એસા માનતા હૈ, આત્મા અલગ હૈ ઓર યે ઉસકે કાર્ય એસા ભી નહીં, યહી મેં હું ઓર યે જો શરીર કે હાલચાલ હો રહે બોલને યે મેરે કાર્ય એસા માનતા હૈ.
અને બીજામાં પણ બીજાના શરીરને જ આત્મા માને છે તથા તે આત્માથી અધિષ્ઠિત એવા અચેતન શરીરને,
આત્માથી અધિષ્ઠિત ને આત્મા જિસમે રહેતા હૈ એસે શરીર,
એસે અચેતન શરીરની ચેષ્ટાઓને આત્માની ચેષ્ટા માને છે.
એને દૂસરે કે દેહ કી જો ક્રિયાએ હો રહી હૈ ઉસકા બોલના ચાલના જો કુછ હૈ હા વો ઉસી કી વો વહી જીવ હૈ વો દેહ હી દૂસરા જીવ હૈ ઓર યે ઉસી કી ક્રિયાએ એસા માનતા હૈ.
પણ દેહ તો ચેતન રહી છે ને આત્મા ચેતન સહિત છે તેને અજ્ઞાની જાણતો નથી એ વાત હવે 10મી ગાથામાં કહી છે. સ્વદેહ સદૃશમ દૃષ્ટ્વા પરદેહમ ચેતનમ પરાત્માધિષ્ઠિતમ મૂઢ પરત્વે નાધ્યવસ્યતિ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વડે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને તો જાણ્યો નહીં ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વડે માત્ર અચેતન શરીરને જ જાણ્યો. માત્ર કહા
કે ઇન્દ્રિય કે દ્વારા તો માત્ર પુદ્ગલ હી જાણને મેં આ જાતા હૈ,
ત્યાં અજ્ઞાનીને શરીર જ હું છું એવી દેહ બુદ્ધિ થઈ ગઈ. અને જેમ પોતામાં શરીરને આત્મા માને છે તેમ બીજાના અચેતન શરીરને દેખીને તેને પણ તે બીજાના આત્મા જ માને છે.
દૂસરો કો ભી શરીર રૂપ સે હી દેખતા હૈ બસ ઉતના હી ઉસકા અસ્તિત્વ એસા માનતા હૈ.
એ રીતે મૂળ જીવ પોતામાંને પરમા અચેતન શરીરને જ આત્મા માને છે, દેહથી ભિન્ન આત્માને તે દેખતો નથી. જે દેહને જ આત્મા માનીને મૂર્છાઈ ગયો તેને અસમાધિ છે. એ સમાધિ શતક હૈ ને, હા તો અસમાધિ ક્યાં હૈ ઓર સમાધિ કા ઉપાય ક્યાં હૈ ઉસકા તંત્ર ક્યાં હૈ વો તો બતાના ચાહતે હૈ. અહીં સમાધિનો ઉપાય બતાવે છે.
પહેલે ભૂલ ક્યાં હો રહી ઉસકો દિખાયંગે ને, હા ફિર વો સમાધિ કા ઉપાય કહેંગે. યહાં પર
દેહાદિતિ ભિન્ન મારો આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપે જ ત્રિકાળ છે એવા શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરવા તથા તેમાં એકાગ્રતા કરવી તે સમાધિ છે. જ્ઞાની તો જાણે છે કે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ અરૂપી છું ને બધા આત્મા પણ એવા જ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અરૂપી છે. આ શરીર દેખાય છે તે તો રૂપી જડ અચેતન છે તે હું નથી, અને બીજા શરીર દેખાય છે તે પણ આત્મા નથી, બીજા આત્માઓ તે શરીરથી જુદા છે.
જેસે મેં ઇસ શરીર સે ભિન્ન હું એસે અન્ય ભી જો કોઈ જીવ દિખ રહે હૈ અભી એકેન્દ્રિય સે પંચેન્દ્રિય તક વે ભી ઉસ દેહ સે ભિન્ન હૈ વે ભી અરૂપી હૈ. જેસે મેં સિદ્ધ સમાન જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ હું એસે વે ભી ઉસી રૂપ હૈ. અજ્ઞાની તો પોતાના આત્માને પણ શરીર રૂપ જ દેખે છે, શરીર હું જ છું એમ માને છે, અને બીજા આત્માઓને પણ એ જ રીતે શરીર રૂપે જ દેખે છે, શરીર જડ છે ને આત્મા ચેતન છે એમ તો બોલે, પણ વળી એમ માને કે શરીરની ક્રિયા આત્મા કરે છે, શરીરની ક્રિયાથી આત્માને લાભ નુકસાન થાય તો તે પણ શરીરને આત્મા જ માને છે. એ શરીરની ક્રિયા સે મોક્ષ કા માર્ગ શરૂ હોતા એસા ભી માનને વાલે ને, આત્મા કો લાભ હોતા હૈ. અને શરીર કી ક્રિયા વો બાત અલગ ભિન્ન હૈ, રાગાદિ ભિન્ન હૈ, ઓર જીવ કા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ ભિન્ન હૈ, ઓર એ તો શરીર કી ક્રિયા કો યે મેરી હૈ એસા માન બેઠા. શરીર થી ભિન્ન આત્માને ખરેખર તે માનતો નથી અને તેને સમાધિ થતી નથી. દેહ તે જ હું એમ દેહને જેને આત્મા માન્યો છે તેને દેહ છૂટતા સમાધિ કેમ રહેશે? નજર તો દેહ ઉપર જ પડી છે. ક્યાં કહા કિસકો દેખ કરવો? તે દેહ કી ક્રિયા કુછ સુધારના ચાહતા હૈ, વો તો ઉસકા લક્ષ્ય કિસકા કર રહા હૈ? દેહ કા. અભી રાગાદિ કી વાત યહાં નહીં ઉઠાઈ, અભી દેહ તક કી વાત ચલ રહી. જો રાગાદિ કા કરતા માન બેઠે ઉસકા લક્ષ્ય કિસકા હૈ તો રાગ કા લક્ષ્ય કરતા રહેતા હૈ ઓર ઉસકો સુધારને કી ચેષ્ટા કરતા હૈ. યહાં તો કહેતે અપના લક્ષ્ય કરકે ઉસકો જાનના હૈ, બસ ઇતના હી કરના થા. તો નજર તો દેહ ઉપર જ પડી છે અને તેને દેહ છૂટવાના અવસરે સમાધિ રહેશે નહીં. જ્ઞાની તો પોતાના આત્માને દેહથી ભિન્ન જ જાણે છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ હું છું, શરીર હું નથી એવું તેને ભાન છે. એટલે દેહ છૂટવાના અવસરે પણ અશરીરી ચૈતન્યના લક્ષ્યે તેને સમાધિ જ રહે છે. देखो कैसे भी संयोग में देह क्यों न छूटे, उन संयोगों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य कर सकता है कि नहीं कर सकता? माटे परंतु इसको अधिकता किसकी बात है? तो कि बाह्य अमुक एक क्रिया करूं तो मेरा समाधि होगा ऐसा मानता है. हाँ, यानी वो क्रियाएं नहीं होती ऐसी बात नहीं है. ज्ञानी को होगी, परंतु जिसने ऑलरेडी समय को प्राप्त किया है उसके आगे चलकर ऐसे भी भाव होते हैं, परंतु उन भावों को वो वृत्ति उठी है, वो शुभ भाव है, वो समाधि नहीं है. समाधि तो उनसे रही जो चैतन्य का लक्ष्य किया है वो समाधि है. माटे भेद ज्ञान करीने अंतरमा स्व संवेदन थी चिदानंद स्वरूप पोताना आत्मा ने जाणवो तेज समाधि नो उपाय छे. नीचे कैप्शन दिया, अहो મોક્ષપુરીમાં બિરાજમાન સિદ્ધ ભગવંતો તેમને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વડે દેખીને, કે ઉનકો દેખને કો તો અરૂપી હૈ, જ્ઞાન સે ઉનકો જાનના હૈ. મોક્ષગામી સાધક જીવો નમસ્કાર કરે છે. પોતાના આત્મામાં એવો સ્વભાવ છે તેને તો સ્વાનુભૂતિ વડે દેખે છે, અને અનુભૂતિ સહિતના જ્ઞાન વડે સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ ઓળખે છે. એને વહી જીવ સિદ્ધો કા સચ્ચા સ્વરૂપ પહેચાનેંગે, ઓર જો સિદ્ધો કો પહેચાનેંગે વહી વો આત્માને કે અનુભૂતિ કરેંગે. અબ હમ યહી રુકેંગે. જાવાની કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો, સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેત હો. નલિન નમો સીતાણ નમો આયર્યાણ નમો વૈજ્ઞાન.